नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार सभी परिवारों को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सरकार करेगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत करेंगे अपने विचार साझा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार सभी परिवारों को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी शक्ति के साथ मौजूदा हालात का मुकाबला कर रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से एकजुटता के साथ वर्तमान स्थिति का सामना करने का आह्वान किया है।
मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। जो भारत के हित में है वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वो जरूरी कदम उठा रही है जिससे देशवासियों को कम से कम मुश्किल हो।
भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े।
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के बीच राज्य में उर्वरकों की कहीं कोई कमी नहीं है। श्री यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष का कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव को लेकर आज पटना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कोई होर्डर ना होर्डिंग करे और ना कोई कालाबाजारी करे और इसका इस समय का कोई नाजायज लाभ नहीं उठावे। इसलिए सभी जिला में हमने कहा है कि खाद के स्टॉक का वेरिफिकेशन करिए, आदेश दे दिया है। हम साफ तौर पर कहा है अपने अधिकारियों को कि साहब हम स्टॉकिस्ट पर भी पूरा ध्यान रखने का काम करेंगे। और हमारे जो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं और कृषि समन्वयक हैं, जिला के कृषि पदाधिकारी हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी तरह से कोई कमी आई आज के इंस्पेक्शन के बाद तो जिम्मेवारी फिक्स है इन अधिकारियों पर, हम उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने आज मधुबनी जिले के पंडौल में संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र की कंपनी सावी लेदर टेक्सटाइल इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में निवेश का वातावरण बन रहा है और औद्योगिक इकाइयों के खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
सीधे 12,000 लोगों को सीधे इस फैक्ट्री से नौकरी मिलने वाला है। इसलिए पूरी बिहार सरकार आपके साथ खड़ा है।
इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद सुरेश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। श्री कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस संबंध में लाइजनिंग ऑफिसर ने फोन कर उन्हें यह सूचना दी है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को ही अन्य 4 नवनिर्वाचित सांसद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के भी शपथ लेने की संभावना है।
10 तारीख को मुझे शपथ लेना है। मैं उसकी तैयारी में हूँ। अभी पार्टी का काम चल रहा है, प्रशिक्षण का वर्ग चल रहा है, उस काम को देख रहा हूँ और उस काम के रहते हुए मैं बीच में जाऊंगा, दिल्ली 8 को जाऊंगा दिल्ली और 10 को शपथ लूंगा।
मधुबनी के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से आज उत्खनन कार्य की शुरुआत कर दी गई। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने उत्खनन कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्खनन कार्य से मिथिला की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलू सामने आएंगे। श्री झा ने कहा कि बलिराजगढ़ में संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों को संरक्षित कर रखा जाएगा।
और हम लोगों को लगता है कि मिथिला का बहुत सारा इतिहास आज भी दफन है, नहीं आया है बाहर। हम लोग का इतना बड़ा इतिहास लीगेसी, नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ तब लोग जाने, यहाँ खुदाई नहीं हुआ, यहाँ खुदाई कराना दो बार शुरू भी हुआ तो बीच में ही छोड़ के चले गए। यहाँ वाटर टेबल के ऊपर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या नहीं है, अगर पानी भी आए तो चैनलाइज करके निकाल दिया।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम में बड़ा परिवर्तन दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा समेत राज्य के विभिन्न भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।
दिनांक 29 मार्च 2026 राज्य के पूर्वी भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना।
विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में आंधी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और वज्रपात की घटना दर्ज की गई। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए, जिससे सड़क यातायात बाधित हुआ। वहीं कई स्थानों पर विद्युत पोल उखड़ जाने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इधर आंधी बारिश के कारण फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है, आम और लीची की फसल को भी क्षति हुई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि कल आए आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को 33% से अधिक फसल नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा।
कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई है, मगर लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। अब भी रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और किसानों की मदद के लिए।
श्री यादव ने बताया कि पिछले सप्ताह ऐसी स्थितियों से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजे के रूप में डीबीटी के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए खातों में भेजे गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने कहा है कि मगही भाषा और संस्कृति प्रदेश की अमूल्य विरासत है। श्री कुमार ने पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने मगही भाषा में सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मगही के विकास के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे।
आज हमने के लिए आवश्यकता है कि मगही भाषा को शिक्षा, साहित्य और दैनिक जीवन में अधिक से अधिक ऐसा स्थान दिल जाए करके एक प्रयास कर रहा है और हम अपने बच्चों को मगही बोलने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है जकर। ताकि आने वाले पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति पर गर्व हो सके। जाकर के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने बांसघाट के पास निर्माणाधीन लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के पास बन रहे बिहार गौरव पार्क, बांसघाट के पास मुक्तिधाम परिसर और गांधी मैदान के पास बनाए जा रहे पटना हाट का भी निरीक्षण किया। नेपाल में नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। बालेन्द्र शाह की नेतृत्व वाली सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 100 ठोस निर्णयों को स्वीकृति देने की योजना बना रही है। इन निर्णयों को पहले 100 दिन में लागू किया जाना है। इन्हें विभिन्न मंत्रालय कार्यान्वित करेंगे। प्रत्येक मंत्री को 4 सांसदों की एक टीम सहायता करेगी। 100 दिन 100 निर्णय मॉडल की सफलता को सरकार के प्रदर्शन के लिए प्रमुख मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने रोहतास जिले के इंद्रपुरी बराज क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संभावित परियोजनाओं और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोक भवन ने प्रोफेसर अजय कुमार सिंह को पटना विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर फिर से बहाल कर दिया है। लोक भवन ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कल पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। नालसा योजना 2016 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मधेपुरा जिले के ग्वालपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत अरार घाट पुल के पास एक वाहन के विद्युत पोल से टकराकर नदी में गिर जाने से वाहन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरवल जिले के एनएच 139 प्रसादी इंग्लिश बाजार के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। कैमूर जिला प्रशासन ने भभुआ के ददरा रोड स्थित एक नकली मिनरल वाटर कंपनी को सील कर दिया है। यह कार्रवाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर की गई है। सीवान जिले के जीरादेई रेलवे स्टेशन के पास रेल ओवर ब्रिज निर्माण के लिए केंद्र से सहमति मिल गई है। इस ओवर ब्रिज के निर्माण से इस इलाके की एक बड़ी आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। अररिया जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में 23 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार सभी परिवारों को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सरकार करेगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत करेंगे अपने विचार साझा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।